प्रिय मित्रों नमस्कार। आज 6 दिसंबर 2016 है और आज के इस afis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और मित्रों आप सबके साथ ही मैं स्वागत करता हूं अपने उन 8 नौजवान साथियों का भी जिन्होंने एकेडमी की फरवरी मार्च में होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन साथियों के नाम हैं गीता कुमारी दास, आप खड़गपुर वेस्ट बंगाल से हैं। सोमातरी नस्कर, आप भी खड़गपुर वेस्ट बंगाल से ही हैं। अम्बिलाल उइके, आप गोंदिया महाराष्ट्र से हैं। शंकरी पटेल, कटक ओडिशा से हैं। रविन्द्र कुमार मीना, आप सवाई माधोपुर राजस्थान से हैं। दीपक कुमार दिल्ली से हैं। शैलेश कुमार सिंह मधुबनी बिहार से हैं और अरविंद कुमार वर्मा लखीमपुर खेरी से हैं। तो गीता, सोमातरी, अम्बिलाल, शंकरी, रविंद्र, दीपक, शैलेश और अरविंद, आप सभी 8 साथियों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और मित्रों स्वागत के इस क्रम के बाद अब हम लोग आते हैं आज के न्यूज एनालिसिस पर। दोस्तों आज के न्यूज एनालिसिस में भी ज्यादा कुछ बातें करने को नहीं है, इसलिए मैं न्यूज एनालिसिस जो AIR न्यूज की बात है उसे काफी छोटे में कहकर अपनी बात खत्म करूंगा। सच पूछे तो अखबारों में भी आज कुछ विशेष नहीं है, इसलिए अखबारों पर भी हम लोग ज्यादा जाने की स्थिति में नहीं है। लेकिन आपको मालूम है कि सिविल सर्विसेज के एग्जाम चल रहे हैं, अभी सिविल सर्विस के एग्जाम को ही आधार बना करके एनालिसिस करने के लिए, बातें करने के लिए बहुत जबरदस्त गुंजाइश है। इसलिए मित्रों जहां भी मुझे मौका मिलेगा मैं डेफिनेटली एग्जामिनेशन ने जो अभी एक अवसर हम लोगों को दिया है उसका इस्तेमाल करने की कोशिश करूंगा, उसका फायदा उठाने की कोशिश करूंगा, ताकि आप लोगों के एग्जाम के प्रति जो दृष्टि है वो बहुत स्पष्ट हो सके, गहरी हो सके और व्यावहारिक भी हो सके। तो मित्रों सबसे पहले AIR न्यूज पर आते हैं। कल की AIR न्यूज आपने सुने, कल के AIR न्यूज में बताया गया है कि जयललिता जो तमिलनाडु की मुख्यमंत्री थी उनकी तबीयत काफी खराब थी, काफी लंबे समय से वो अस्वस्थ चल रही थी। लेकिन सुबह के अखबारों में आपने देखा होगा कि अनफॉर्चुनेटली जयललिता जी नहीं रही। तो मित्रों सबसे पहले तो मैं अपने आप सभी प्रिय श्रोताओं की ओर से, एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से, मैडम प्रीति अग्रवाल की ओर से और अपनी ओर से जयललिता जी के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर उन्हें अपने शरण में जगह दे और उनके जो प्रिय जन हैं उनको यह दुख सहन करने की शक्ति दें। मित्रों अब हम आते हैं जयललिता जी के वो आधार बनाकर जो सिविल सर्विस में जो थोड़ी बहुत संभावनाएं हो सकती हैं उसके बारे में। देखिए फ्रेंड्स एक बात आप लोग बिल्कुल ध्यान में रखिए कि मैं अपने ढंग से एक नेशनल पर्सपेक्टिव में आपके सामने बातें रखता हूं, उसमें बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो रीजनल पर्सपेक्टिव की भी होती हैं। जैसे जयललिता जी का निधन, तो डेफिनेटली नेशनल पर्सपेक्टिव में एक वो तमिलनाडु की मुख्यमंत्री रही है, अपने क्षेत्र की बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री रही है और चूंकि अभी वो पद पर थी तो उनका जाना एक तरह से एक नेशनल पर्सपेक्टिव की बात है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अगर हम सिविल सर्विस के लिहाज से देखें तो इसके बिल्कुल दो भाग हो जाते हैं। पहला हो जाता है रीजनल पर्सपेक्टिव यानी कि तमिलनाडु। डेफिनेटली यह घटना तमिलनाडु के पर्सपेक्टिव में बहुत इंपॉर्टेंट घटना है, दुखद घटना है नो डाउट, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट घटना है। यहां तक कि अगर तमिलनाडु का कोई स्टूडेंट मेंस क्वालिफाई करके यूपीएससी के इंटरव्यू में पहुंचता है, जो इंटरव्यू आगे होंगे अगले साल होंगे, तो उसके लिए उन्हें अभी से तैयारी करनी चाहिए। और डेफिनेटली जयललिता जी का जो व्यक्तित्व रहा है, उनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है, स्पेशली उनकी गरीबों के प्रति जो पॉलिसी रही है, आप देखें कि अम्मा के नाम से वो लोकप्रिय थी और लोगों के कल्याण के लिए वो एक तरीके से बहुत ही आलोचना के स्तर तक चली गई थी। लोग उनकी बहुत सी योजनाओं को राष्ट्रीय स्तर पर पसंद नहीं करते थे, जैसे अम्मा कैंटीन, अम्मा मतलब बहुत ही सस्ते कीमत पर लोगों को भोजन उपलब्ध कराना, नाश्ता उपलब्ध कराना, ये सारी चीजें उन्होंने की। और ये कहा जाता है कि तमिलनाडु का जो टोटल रेवेन्यू है स्टेट का, उसका ऑलमोस्ट 27% केवल सब्सिडी में चला जाता था, यही गरीबों के लिए इस तरह की व्यवस्था कर देने। तो उनकी क्या इंपॉर्टेंट पॉलिसी रही है, पब्लिक ओरिएंटेड, उनकी पार्टी की क्या स्थिति है, इन सब के बारे में बहुत अच्छी तैयारी होनी चाहिए। तो यह है उसका एक रीजनल एस्पेक्ट। ये तमिलनाडु के जो स्टूडेंट हैं उनको इस बारे में विशेष ध्यान रखना होगा, अभी से ही रखना होगा, ये नहीं कि आप इंटरव्यू के समय तैयारी करेंगे। दूसरा है फ्रेंड्स एक नेशनल पर्सपेक्टिव। नेशनल पर्सपेक्टिव भी इस घटना का है, लेकिन वो एक छोटे से पर्सपेक्टिव में हम लेंगे। और इस बात को समझाने के लिए मित्रों, मैं आपके सामने अभी जो एग्जाम हुए, जो कल सिविल सर्विस के एग्जाम जो जनरल स्टडीज को लेकर हुए हैं मेंस के, उसके एक प्रश्न का हवाला देना चाहूंगा। और यह हवाला मैं इसलिए दे रहा था क्योंकि आप सिविल सर्विस के प्रिपरेशन को समझ सकें दोनों नजरियों से। पहला तो यह कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और दूसरा ये कि आप उसके उत्तर कैसे देंगे। देखिए, प्रश्न अगर आप ऊपर से देखेंगे तो बहुत कठिन नहीं लगेंगे, लेकिन जब आप उनके उत्तर देने बैठेंगे तो फिर वो उतने आसान नहीं रह जाएंगे जितने आपको लग रहे थे। जैसे दोस्तों कि जनरल स्टडीज का जो सेकेंड पेपर कल जो हुआ है मेंस का, उसका एक मैं आपको क्वेश्चन पढ़कर सुना रहा हूं। क्वेश्चन है कि राजनीतिक पार्टी प्रणाली, इन बातों को आपको ध्यान में रखना होगा, परिवर्तन के ऐसे दौर से गुजर रही है जो अंतर विरोधों और विरोधाभासों से भरा प्रतीत होता है। चर्चा कीजिए, मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, भारतीय राजनीतिक पार्टी प्रणाली परिवर्तन के ऐसे दौर से गुजर रही है जो अंतर विरोधों और विरोधाभासों से भरा प्रतीत होता है। चर्चा कीजिए। अंतर विरोधों के लिए है दोस्तों कंट्राडिक्शंस, और विरोधाभासों का जो अंग्रेजी वर्ड है वो है पैराडॉक्सिस, से भरा प्रतीत होता है। अब आपको लग रहा होगा कि सर कहां ये राजनीतिक पार्टी प्रणाली की बात है और कहां हम जयललिता जी के निधन की को लेकर चल रहे हैं। डेफिनेटली जयललिता जी के निधन की घटना केवल इस बारे में यहां पर जुड़ती है कि अब जो उनकी जो AIDM के पार्टी है, उस पार्टी में जो एक संकट पैदा हो रहा है। आज के अखबारों में थोड़ा सा आपने इशारे से देखा होगा कि लगातार बैठकें हो रही, किसी तरह से चीफ मिनिस्टर का चयन कर लिया गया है, लेकिन उससे बहुत लोग सहमत भी नहीं हैं। और ये आशंका व्यक्त की जा रही है कि अब AIDMK के सामने बहुत पार्टी नेतृत्व का बहुत बड़ा संकट होगा, कहीं टूट के कगार पर ना आ जाए, जबकि अभी एक ही साल हुए हैं सरकार को बने हुए, मतलब 4 साल इनके पास अभी वक्त है जब ये पार्टी सरकार बना रह सकती है सरकार में। ये तो देखिए, अब ये तो अब एक अनुमान की बात है, कितनी सही होती है कितनी गलत नहीं है हम नहीं जानते, कितना गलत है। लेकिन मित्रों, उसके केंद्र में क्या है, मतलब ये आशंका क्यों व्यक्त की जा रही है, आपको इसी को समझना होगा, और तब आप उस अंतर विरोध और विरोधाभासों को समझ लेंगे जो हमारी राजनीतिक पार्टी प्रणाली में है। अंतर विरोध और विरोधाभास के अंतर को समझ लीजिए, दोनों एक नहीं है। अंतर विरोध का मतलब है जो पार्टी के अपने अंदर ही है, विरोधाभासों का मतलब है कि वो बाहर तो कहते कुछ हैं लेकिन पार्टी एक्शन में कुछ और करती है। यानी कि ये कह दीजिए कि जो विरोधाभास है उसका संबंध उनके बाहरी एक्शन से है, और जो अंतर विरोध है उनका संबंध उनके संगठनात्मक पार्टी के अंदर से है। तो ये दोनों अलग अलग शब्द हैं, राइट। तो अब आप देखिए कि जैसा मैंने कहा कि AIDMK के सामने अब जो संकट आएगा वो क्या है, इसका इस तरह से समझने की कोशिश कीजिए कि अगर कोई भी पार्टी, मान लीजिए कि किसी भी वजह से अपने मुख्यमंत्री को हटाती है, तो सेकेंड लाइन तैयार रहती है। जैसे आर्मी में होता है, आर्मी में आप देखेंगे कि सेकेंड लाइन हमेशा तैयार रहती है। अगर फ्रंट लाइन की हमारी सेना हार गई या मारी गई तो सेकेंड लाइन में डिफेंस में ऑलरेडी रहती है, वो तुरंत लड़ने लगती है। जैसे ब्रिटेन में आप देखें तो ब्रिटेन में ब्रेक्जिट हुआ, और ब्रेक्जिट होने के बाद वहां के प्रधानमंत्री जो उस समय थे उन्होंने तुरंत त्यागपत्र दे दिया, और त्यागपत्र देते ही तुरंत दूसरे प्राइम मिनिस्टर ने टेक ओवर कर लिया, कोई संकट नहीं हुआ पार्टी में। यानी कि पार्टी का जो नेतृत्व होता है वो कई लेयर से चलता रहता है। लेकिन भारतीय राजनीतिक प्रणाली में क्या है, इसका मतलब यह हुआ कि एआईएडीएमके ने अपना जो सेकेंड नेतृत्व जो होना चाहिए लाइन, उसको तैयार नहीं किया, यानी कि हमारी पूरी की पूरी जो राजनीतिक पार्टी प्रणाली है वो व्यक्ति पर आधारित है। जयललिता जी नहीं रही, पार्टी में संकट पैदा हो गया। केवल जयललिता जी की बात नहीं, हमारी बहुत सी राजनीतिक पार्टियां ऐसी हैं जो बिल्कुल व्यक्ति पर आधारित है, व्यक्ति पर। आप चाहे उड़ीसा के जनता दल पार्टी को देख लीजिए, या तृणमूल कांग्रेस को, वेस्ट बंगाल में ममता जी की पार्टी को देख लीजिए, समाजवादी पार्टी को देख लीजिए जिसमें मुलायम सिंह जी और अखिलेश जी हैं, फिर आप बीएसपी को देख लीजिए, मायावती जी हैं ज्यादातर पार्टी में, आप कांग्रेस पार्टी को देख लीजिए, पूरी तरह से वो गांधी परिवार पर निर्भर हो गई है, वो उससे बाहर जा ही नहीं पा रहे हैं। कम्युनिस्ट पार्टी में भी लगभग इसी तरह का चरित्र दिखाई देता है कि जो लोग एक बार ऊपरी स्तर पर पहुंच गए, अपेक्स पर, वही सारे निर्णय ले रहे हैं। सच पूछिए तो इसमें एक ही पार्टी दिखाई देती है, भारतीय जनता पार्टी, जिसमें जो वाकई में नेतृत्व के मामले में काफी लिबरल है, जहां इस तरह के संकट नहीं आते। यहां तक कि नई बनी हुई आप पार्टी को देख लीजिए, लगता है कि अगर केजरीवाल जी ने किसी वजह से पार्टी छोड़ दी, राजनीति से संन्यास ले लिया बाय दी वे, तो दूसरा नेतृत्व तो है ही नहीं, पार्टी बैठ जाएगी। जो कुछ भी आप पार्टी जो खड़ी हुई है वो एक व्यक्ति के दम पर है, और वो केजरीवाल जी हैं। तो इस तरीके से अब आप देखिए कि एक व्यक्ति का नेतृत्व है, एक व्यक्ति का नेतृत्व लोकतांत्रिक नहीं होता, लोकतांत्रिक का मतलब ही होता है कई लोगों के द्वारा नेतृत्व किया जाना, कई लोग सामूहिक रूप से मिलकर नेतृत्व करते हैं। तो हमारे कंट्री में तो डेमोक्रेसी है, बात हम डेमोक्रेसी की करते हैं, लेकिन आंतरिक रूप से हमारे अंदर विरोधाभास, हम एक व्यक्ति के नेतृत्व को लेकर चलते हैं। तो दोस्तों, और भी इसके कई पॉइंट्स हैं, मैं उन पॉइंट्स पर यहां नहीं जा रहा हूं, मैं यहां केवल आपको इशारे के तौर पर यह बता रहा हूं कि आपकी तैयारी किस तरीके से होनी चाहिए, और किस तरीके से हम एक दूसरी घटनाओं को जो लगातार घटती रहती हैं, अपनी इन बातों से जो हम उत्तर लिख रहे हैं जोड़ सकते हैं, और ये लेटेस्ट होनी चाहिए। मैं एक बात आप लोगों से गुजारिश करना चाहूंगा फ्रेंड्स, कि अभी जो पेपर्स आ रहे हैं, पहले भी थे, करेंट अफेयर्स पर बेस्ड है, करेंट अफेयर्स पर ही बेस्ड है। मैं आगे चल करके हम चर्चा करेंगे, निबंध के बारे में मैंने थोड़ी सी चर्चा की थी, अभी तीन चार और निबंध मैं आज आप लोगों को बताऊंगा, करेंट अफेयर्स पर ही बेस्ड है। जब मेरी स्टूडेंट से बात होती करेंट अफेयर्स पे, तो उनको लगता है कि करेंट अफेयर्स की तैयारी तो सिर्फ न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, रेडियो न्यूज, इन सब से हो जाएगी। डेफिनेटली ये तो जीवन दान है ही, ये तो रक्त प्रवाह की तरह, इनके बिना तो आप कुछ ही नहीं कर सकते। लेकिन याद रखिए, सिर्फ करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट नहीं है, करंट अफेयर्स की एनालिसिस की जानी चाहिए। और वो एनालिसिस कहां से आएगी? एनालिसिस तब तक नहीं आएगी जब तक कि आपको बेसिक जानकारियां न हो, सब्जेक्ट के बेसिक ज्ञान न हो, तब तक एनालिसिस नहीं आती आएगी। करंट अफेयर्स तो फिर एक सूचना का माध्यम हो जाएंगे, जैसे मैंने कहा कि अब जयललिता जी की घटना एक सूचना है, लेकिन इस सूचना का इस्तेमाल, इसको प्रोसेस कैसे करेंगे, इसको प्रक्रियागत उसमें डाल करके इससे निष्कर्ष कैसे निकालेंगे? आफ्टर ऑल आपको मक्खन निकालना है तो दूध को मथना तो आना चाहिए, तो एनालिसिस एक तरह से मथने का ही काम है। तो मित्रों, इसके लिए दो चीजें बहुत जरूरी हो जाती हैं, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूजन में रहते हैं कि अगर करंट अफेयर्स से ही सब क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो यार, तो बेसिक की जानकारी की क्या जरूरत है? उतनी ही जरूरत है जितनी की करंट की जरूरत है, दोनों 50-50% है, और इसके बाद आप में एनालिसिस पावर आनी चाहिए। तो मित्रों, आप कह सकते हैं कि मैं इस बात को कहने में फक्र महसूस करता हूं कि जो हमारे 15 दिन की क्लासेस हैं वो आपको बेसिक्स के बारे में बताती हैं। बेसिक्स क्या होती हैं आप समझ लीजिए। इसके बाद जो आपको 50 डेली ऑडियो गाइडेंस प्रोवाइड किए जाते हैं वो फिर करंट के बारे में बताते हैं, करंट को आधार बनाकर बेसिक्स के माध्यम से उसकी एनालिसिस बताते हैं। और ये जो डेली ऑडियो गाइडेंस है, ये डेली ऑडियो गाइडेंस करंट पर ही बेस्ड है दोस्तों, जिसमें करंट भी है, बेसिक्स भी है और एनालिसिस भी है, ये तीनों का कॉम्बिनेशन है। करंट को लेते हैं, बेसिक्स के कसौटी पर उस करंट को कसा जाता है और फिर आपको चीजें प्रोवाइड की जाती हैं। तो मित्रों, मुझे लगता है कि डेली ऑडियो गाइडेंस की एक बहुत बड़ी यह भूमिका तो है, लेकिन उस भूमिका को स्वीकार करना न स्वीकार करना बिल्कुल वो आप लोगों के ऊपर है, और उसमें मुझे ज्यादा कहने की जरूरत मुझे लगता है कि होनी भी नहीं चाहिए। मित्रों, न्यूज में जो दो खबरें और थी, आपने देखा वो जलवायु परिवर्तन के बारे में हमारे प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट था, और डिजिटल भुगतान के बारे में जो सरकारी तंत्र में कहा गया है, तो छोटी सी सूचनाएं हैं, उनके बारे में ज्यादा बात करने की जरूरत मैं नहीं समझता। फ्रेंड्स, जहां तक न्यूज़पेपर्स क्लिपिंग्स का सवाल है, मैं प्रोवाइड कर रहा हूं। आज बहुत कम क्लिपिंग्स हैं, ज्यादा क्लिपिंग्स नहीं है, तो आप देख लीजिएगा, उस पर भी मैं बात नहीं कर रहा हूं। मित्रों, अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूं वो निबंध, जो कल मैं निबंध के पेपर के बारे में चर्चा कर रहा था, जो अभी मेंस के हैं, तो सेक्शन ए के मैंने आपको चार निबंध बता दिए थे। सेक्शन बी के जो चार निबंध हैं वह मैं आपको और बता रहा हूं। आप देखिए कि किस तरह से करंट से जुड़े हुए हैं और आप इन पर कैसे निबंध लिखेंगे, कैसे इसकी तैयारी करेंगे। सेक्शन बी में भी दोस्तों चार निबंध हैं, जिसमें से एक आपको लिखना है, जिसकी शब्द सीमा है 1000 से 1200 शब्द। सेक्शन बी का जो पहला निबंध है वह है सहकारी संघवाद, मिथक अथवा यथार्थ, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, मिथ और रियलिटी, फेडरलिज्म पर है। और आपने देखा है कि फेडरलिज्म पर मैं लगातार आप लोगों से बातें करता रहता हूं, जहां भी मौका मिलता है मैं फेडरलिज्म की चर्चा करना कभी भी नहीं भूलता। इसके बाद जो दूसरा निबंध है फ्रेंड्स, वह है साइबर स्पेस और इंटरनेट, दीर्घ अवधि में मानव सभ्यता के लिए वरदान अथवा अभिशाप। साइबर स्पेस एंड इंटरनेट, ब्लेसिंग्स आर कर्स टू द ह्यूमन सिविलाइजेशन इन द लॉन्ग रन। दोस्तों, ये वही परंपरागत किस्म का निबंध है जिसको हम कहते थे विज्ञान वरदान या अभिशाप। ये पहले हम लोगों के समय में ये प्रश्न, ये निबंध लिखने को दिया जाता, विज्ञान वरदान या अभिशाप। विज्ञान को अब रिप्लेस कर दिया साइबर स्पेस और इंटरनेट, क्योंकि यही आज का विज्ञान हो गया है, सबसे प्रमुख विज्ञान तो यही है। ये एक तरह से फ्री निबंध है जिसमें आप काफी लिबर्टी ले सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है, तीसरा जो निबंध है फ्रेंड्स, वो है भारत में लगभग रोजगार विहीन समृद्धि, आर्थिक सुधार की विसंगति या परिणाम, नियर जॉबलेस ग्रोथ इन इंडिया, एन एनोमली और एन आउटकम ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। मित्रों, इस पर मैंने बहुत से आपको लगातार न केवल प्रेस क्लिपिंग्स ही प्रोवाइड किए हैं, बल्कि करेंट कंटेंट भी प्रोवाइड किए हैं कि अभी लिबरलाइजेशन के दौर के बाद में भारत की स्थिति क्या हुई है, हम रोजगार पैदा कर पा रहे हैं, रोजगार पैदा नहीं कर पा रहे हैं तो क्या स्थिति है, क्या किया जाना चाहिए। आप लोग जाकर के अगर देखेंगे प्रेस क्लिपिंग्स वाले सेक्शन में तो ढेर सारे आपको इस तरह के आर्टिकल्स मिल जाएंगे, करंट कंटेंट के अंतर्गत भी आपको मिल जाएगा। आर्थिक सुधार की विसंगति का मतलब है वही लिबरलाइजेशन के बाद के जो स्थिति रही है, तो ये एक थोड़ी सी इकोनॉमी, जो हमारे देश की इकोनॉमी है, जो प्रेजेंट इकोनॉमी है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। और चौथा है दोस्तों डिजिटल अर्थव्यवस्था, एक समताकारी या आर्थिक असमता का स्रोत, डिजिटल इकोनॉमी, ये लेवलर और ए सोर्स ऑफ इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। डिजिटल अर्थव्यवस्था पर है, और आप देखेंगे कि डिजिटल अर्थव्यवस्था पर मैंने आप लोगों को योजना और कुरुक्षेत्र के आर्टिकल्स प्रोवाइड किए हैं। तो मित्रों, इस तरह से ये आठ निबंध थे, आठ निबंध मैं आपके सामने रख चुका हूं। अब मैं आता हूं अंतिम चरण पर, जो ईमेल का चरण है। तो सभी ईमेल लिखने वाले अपने दोस्तों को धन्यवाद देता हूं, उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। एक हमारे फिफ्थ बैच के स्टूडेंट रहे हैं नीरज पाल, उन्होंने अपने अंदर आए हुए परिवर्तनों के बारे में मेल भेजा है। नीरज, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और डेफिनेटली अपने उन चेंजेस को लगातार बनाए ही न रखो बल्कि उसे बढ़ाते भी चले जाना है, क्योंकि चेंजेस जो तुमने लिखे हैं उसकी जो दिशा है वो चूंकि पॉजिटिव है, सकारात्मक दिशा है, तो डेफिनेटली उसका बहुत बड़ा रोल तुम्हारे सिविल सर्विस की प्रिपरेशन में भी होगा, सफलता में भी होगा, और ओवरऑल पूरी जिंदगी पर होगा। मित्रों, मैं कुछ दोस्तों के नाम ले रहा हूं, वह रवि शुक्ला, प्रीति बंसोड़, चंद्रशेखर यादव, रोशनी बिहार से है, नंदिनी तिवारी, शुभम तिवारी, विवेक कुमार मिश्र प्रतापगढ़, और अमृतपाल कौर। आप सबका भी बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रों, इसी के साथ ही आज का यह डेली ऑडियो लेक्चर यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।